eating out of his hand.
Men of the jury! Men of Athens! That Aristogiton is called a dog? I don't have to tell you. You know that already. I shall not speak of his being a human monster, though among such monsters he stands first, middle, and last. I shall not speak of these things, as for these things he cannot probably be held to blame. But I shall speak of his violating the laws of the city. He has told you that he is a free citizen and can do as he pleases. By heaven, suppose every citizen had the boldness and impudence of this Aristogiton. Suppose all reasoned with themselves as he does, that a man may say or do what he pleases in a democracy without restraint. Suppose each individual, banishing order and discipline from his life, regarded his own will as the law. What would happen then, O men of Athens? Could any government then go on? How say ye? The whole life of men, O Athenians, whether they inhabit a great city or a small one, is governed by law. Laws alone make possible civilized life. They are an invention of the gods, a resolution of wise men, a corrective of errors, intentional and unintentional, a compact of society, according to which all who belong to society ought to live. No man may be allowed to put society in peril by disobeying its laws. Your judgment now, O men of Athens.
I'm happy to say that I escaped death.
And jail, citizen?
No, I didn't escape jail. I had much time there to ponder the words of Demosthenes on the role of law in democratic societies.
And your conclusion, citizen?
That laws in democratic societies are not merely means of preserving peace, but also of promoting welfare. Their function enlarges from that of merely reconciling individual human wills into that of satisfying collective human wants. As one of our greatest thinkers, Aristotle, was to put it, laws come into existence originally for the sake of mere life, but they continue in existence for the sake of the good life.
Thank you, citizen Aristogiton. Go back to your chair in peace, and thank you.
Thank you.
And there were other men of thought in Greece who pondered upon law also and upon its place in the life of nations. Their thinking gave law new dimensions which have shaped all the centuries since. Notable among these philosophic Greeks was one Socrates, of a stonemason, son, of appearance, sloven, of mind, subtle. His favorite haunts were Athenian temples. His favorite pastime was to corner Athenian youth for involved and often disconcerting philosophic dissertations. Is that not so, Sir Socrates?
Yes. Well, I must confess that many thought so.
Thank you. Well, the topic today is encephalitis.
अब जो आप गाना सुनेंगे वो ओपी धामा साहब ने गाया है। इन्होंने आज मार्च 27 को 1961 सन में बाल गोविंद मिश्रा साहब के दौलत कदे पर ये गाना गाया है, मेरी ख़ास तौर पे मेरी फरमाइश पर। और आपका इंडिया का एड्रेस ये है, ओपी धामा, प्रोफेसर ऑफ एक्सटेंशन, स्टेट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर, मध्य प्रदेश, इंडिया। ये गाना रोहतक का लोकगीत है। अब आप इन्हीं की ज़ुबानी ये गाना वहाँ की लोक धुन में सुनिए। ओपी धामा साहब।
अकरे माता ने बनवास तो लिया, बेटा हो जन कजदाग दो लिया, 8 साल का कंवर हो लिया, माँ मर गई थी कंगाल की हो। और राय सिंह फूप अकल बंद छतरी, जिनके थी एक बिना पुत्री, जिनके थी एक बिना पुत्री, थी वो तो शान सकल मैं हो सुतरी, उम्र में थी 16 हो 17 जी साल की। अरे रे 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 ओ कहे ओ पीता मांगा के, सब पंचों को शीश निवा के, सब पंचों को शीश निवा के, वन में जाके नु सोचन लागा, इस तरिया से नु लोचन लागा, उस जैसे मछली हो सूखे जी ताल की। और राय सिंह भूप अकल बन छतरी, जिनके थी एक बिना पुत्री, जिनके थी एक बिना पुत्री, थी वो तो शान सकल मैज सुतरी, उम्र में थी 16 हो 17 जी साल की। अरे रे 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 ओ, सब पंचों को जी शीश निवा के, कहते ओ पी धामा गा के, बन में जाके नु सोचन लगा, अपने मन में होलो चन लगा, इस तरिया से नु करना लगा, जो मछली जी सूखे हो ताल की। अरे रे रे रे
ओपी धामा साहब, जिन्होंने आपने अभी अभी रोहतक का लोग ही सुनाया, वो अब अपनी ज़ुबानी खुद अपना ही तारुफ पेश करते हैं। ओपी धामा साहब।
भाइयों, मैं दिल्ली के नज़दीक एक खेकड़ा गांव है जिला मेरठ में, वहाँ एक किसान के घर में पैदा हुआ था, और 1947 में मैंने MSc एग्रीकल्चर पास किया, फिर लखावटी कॉलेज जो बुलंदशहर में है यूपी में, वहाँ पर लेक्चरर लगा। 1952 में वहाँ से फिर मैं ग्वालियर एग्रीकल्चर वहाँ पर सीनियर लेक्चरर लगा, फिर वहीं पर रहते हुए MA इकोनॉमिक्स और MA सोशियोलॉजी किया। उसके बाद मैं 1956 में मैं एक साल के लिए इज़राइल गया, वहाँ पर यूनेस्को के स्कॉलरशिप पर एक सर्वे किया। उसके बाद मैं सीहोर कॉलेज में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन लगा, फिर 1960 की जनवरी से यहाँ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने चला आया, और टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम में मैं यहाँ पे हूँ। बाकी बाल बच्चे भी हैं, वो सब घर पे हैं, खुशी हैं। बाकी थैंक यू।
Thank you. Thank you. ਬਸ ਦੇ ਤੂੰ ਮਤ ਤੰਗ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਬਸ ਦੇ ਸੱਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ।